पे ये उस दबाव में कमी लाना है जो भारत की तरफ से हालिया हफ्ते में वहाँ पे गुरदासपुर में होने वाले हमले के बाद पाकिस्तान पे डेवलप होता हुआ नजर आया था, क्या ये उसका जवाब है? खान साहब, हम आपको दोबारा अजहमत देते हैं, आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही। मीनवाइल अगर आपके लिए भी पॉसिबल हो तो किसी ऐसी जगह जहाँ पे सिग्नल बेहतर हो तो हमारे प्रोड्यूसर्स आपको रीकनेक्ट करते हैं। प्रताप सोमवंशी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, दोनों जोहरी ताकत के हामिल ममालिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत तवील कोशिशें रही हैं कि ताल्लुकात में बेहतरी आए, लेकिन फिर कोई ना कोई एक ऐसा वाक़ हो जाता है जो दोनों में ज़्यादा कशीदगी का सबब बनता है। अभी दोनों अतराफ में जो एलिगेशन आ रहे हैं ये क्या रिफ़्लेक्ट करते हैं, और गुज़श्ता दिनों जो मुलाकात भी हुई प्राइम मिनिस्टर्स की, उसके बाद लग रहा था कि शायद सेक्रेटरीज़ लेवल पर और निचले सतह पर मुज़ाकरात शुरू होंगे, दोनों मुल्क इंगेज करेंगे, क्या रखना आ सकता है, क्या मुश्किल आ सकती है दोनों मुल्कों की इंगेजमेंट में इस टेम्पो के बाद?
मुझे तो लग रहा है कि आप देखिए ये बिल्कुल इसी तरह के हालात साल में आप देखिए तो तीन चार बार की हम बार बार ये बात करते हैं कि कभी हम दोस्ती के नाम पे दोनों तरफ आवाम से ताली बजवाई जाती है और कभी कहा जाता है कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे
जी।
इस बात पे एक हिस्सा है। तो दो तरह के लोग हैं, एक लोग हैं जो ताली बजाने को तैयार हैं कि हाँ दोस्ती होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ कि जो दोस्ती होनी चाहिए अगर ताली बजाने वालों की तादाद करें तो ज्यादा लोग हैं, थोड़े से लोग हैं वो जो कहते हैं नहीं दोस्ती नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे दोनों तरफ से जब हमारे मुल्क पे हमला हो रहा है, हमारे मुल्क पे ये सारी चीजें हो रही हैं तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो ये अब ये क्या होता है कि जो सियासत है वो दोनों इसी दो सेंटीमेंट के बीच में चीजें नचाती घुमाती रहती है।
सही।
अब होता क्या है कि हम जैसे होता है कि हम हमारी आंखों का विजन 6x6 है, हमें उतना ही दिखाई दे रहा है जितना मेरे सामने है।
सही।
तो मैं जो मीडिया के हवाले से मैं देखता हूँ, आप ये देखिए कि सरताज जी साहब आज वहां कह रहे हैं, मेरे पास भी जो जानकारियां हमने कल भी छापी, कल एक जवान मरा, एक घायल हुआ, फिर वो मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं सारा सब कुछ उधर से इधर ही हो रहा है, इधर से उधर कुछ नहीं हो रहा है।
सही।
लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें जो पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा बहुत बड़ा है और ये जो चीजें होती हैं ये मुझे तो बहुत तकलीफ देती हैं कि ये जो जवान मर के आता है उसके लिए कुछ मुआवजे की रकम तय है और वो मुआवजे की रकम दे के हम उसको शहीद बना के उसके गांव में एक छोटा मोटा स्टेचू लगा देते हैं और दोनों तरफ से लोग मरते हैं और यही ये जो फौज के लोग हैं ये तो तब भी चलिए फौज के लोग हैं लड़ने के लिए गए, जो शहरी वहां रहते हैं गांव के लोग रहते हैं वहां पे उनकी जो मौतें होती हैं वो बहुत बुरा होता है, बहुत ही खराब होता है।
जी असलम खान साहब से हमारा दोबारा रابطہ बहाल हो गया है। खान साहब आपसे भी बुनियादी तौर पे अब मैं यही सवाल कर लूँगा कि दोनों मुल्क जो बज़ाहिर लगता है कि ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश में हैं, बार बार उनके जो ताल्लुकात हैं वो बजाय बेहतर होने के मज़ीद कशीदगी का शिकार हो जाते हैं, ये आपके ख्याल में बड़े सोचे समझे तरीके से होते हैं या वाक़ता ये वक्त का फेरा ऐसा है, क्या कहेंगे आप? बताया गया कि उनसे हमारा रابطہ जो है वो मुनक़ता हो गया है। अभी प्रताप सिंह मुंशी साहब ये बताइएगा कि क्या इंटरनेशनल फोरम्स इसमें उनकी मदाखलत बनती है, वो कोई बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं कि कम से कम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद साजी हो, उनका कोई किरदार बनता है? जैसे पाकिस्तान ने इशारा दिया है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा पे ये मामला उठाएंगे।
जी कहने की ये बात पहले भी बहुत बार आई है और देखिए इनडायरेक्टली तो ये बहुत सारे मामले उठते हैं और बिना कहे भी हमारे, अगर आप हमें जिस हवाले से कहें तो अमेरिका तो बिना कहे हम लोगों का गुरु बन जाता है, दोनों को प्रीचिंग करने लगता है, ओबामा साहब यहाँ आते हैं कुछ बोल के जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं कुछ बोल के जाते हैं, तो वो एक जो अमीर मुल्कों की सो कॉल्ड अपनी ओनरशिप है उस हवाले से तो वो बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये सवाल चाहे जहाँ उठाए जाए मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल पे कहीं चीजें अभी इस तरह से आने को है कि अभी कोई इंटरनेशनल दबाव बनेगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में वो कोई थर्ड प्लेयर का या कोई जज का रोल प्ले करेंगे कि वो कोई फैसला करने वाली इकाइयां आएंगी, अभी मुझे ऐसा नहीं लगता।
अभी पिछले दिनों रशिया के अंदर साइडलाइन मुलाकात हुई दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म की, जिसमें प्रिंसिपली ये डिसाइड किया गया कि तमाम जो इश्यूज़ हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुश्किल बना रहे हैं उन पे बात होनी चाहिए और मुख्तलिफ लेवल्स पे, इनिशियली सेक्रेटरी लेवल पे बात करने का इंदिया दिया गया था। तो अब आपके ख्याल में ये जो करंट एक वेव है, लहर है कशीदगी की, उसके बाद मुज़ाकरात का माहौल या मोमेंटम बनता है या उस पर फर्क पड़ेगा?
आप देखिए ना, जब वो बात हो रही थी उसी के बाद एक हो गया कि इंडिया की ओर से ड्रोन की जासूसी की जा रही थी। बाद में फिर चाइना क्लियर करता है कि नहीं साहब, ये ड्रोन तो हम आर्मी को बेचते ही नहीं है, ये ड्रोन तो ओपन मार्केट में अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें घुला मिला दी जाती हैं एक दूसरे में, जैसे कहते हैं ना कि आप मिक्सर बना देते हैं तो वो चीजें और भी गड़बड़ करती हैं। तो वो ड्रोन वाला इश्यूज आ गए। आप ये देखिए कि दोनों तरफ है, एक तरफ हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए कहा जाता है कि वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान में कहा जाता है कि साहब जब से ये हुकूमत आई है तब से चीजें बढ़ी हैं। हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि साहब आप तो कहा करते थे कि हमारे एक फौजी की गर्दन कटेगी तो हम 10 लेके आएंगे, अब साहब लेके आओ, आप तो साहब कुछ नहीं करते हो, आप तो खाली बैठे हो, आप देखिए हमारी सीमा पे बॉर्डर पे इतने लोग मारे जाते हैं। तो यहाँ जो हुकूमत है वो मौजूदा हुकूमत अपोजिशन से इस बात पे घिरती है कि पाकिस्तान के लिए कोई सख्त रवैया नहीं अपनाती। पाकिस्तान से जो बयान आते हैं वो ये आते हैं कि सख्त वो होते हैं। तो मुझे लगता है सारी जगह जो चीजें हैं वो पॉलिटिक्स, चाहे इंटरनल लेवल पे हो चाहे एक्सटर्नल लेवल पे हो, पॉलिटिक्स ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। और हम सारे लोग जो कहने को हम अखबारों के एडिटर हैं और बहुत सारी चीजें हमसे ढकी छुपी रहती हैं जो हमारी जानकारी के बाहर की चीज होती है।
सही, बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। वैसे आपने कहा ना कि पॉलिटिक्स, एक इसका मुख्तलिफ नुकता नजर भी है कि पॉलिटिशियन तो शायद बात करना चाहते हैं, कुछ और फोर्सेज हैं जो इन हालात को ख़राब करती हैं। असलम खान साहब से हमारा दोबारा रब्ता बहाल हो गया है। खान साहब आप बताइएगा, ये जो करंट एक वेव आई है दोबारा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुक में कशीदगी की, इसके एंड रिजल्ट क्या है? पाकिस्तान कहता है कि मैं इंटरनेशनल फोरम पर यह बात उठाऊंगा, इंडिया ऑलरेडी पुटअप कर चुका है एक लिंक्ड मामला जो था पाकिस्तान के साथ, तो क्या वाकईतन अब किसी और को, तीसरी फोर्सेस को या इंटरनेशनल फोरम्स को मीडिएट करना है और दोनों मुल्कों के दरमियान अब ये कैपेबिलिटी या सलाहियत नहीं रही कि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो खुद उस पर बात कर सकें?
शुक्रिया असद। असद, ये बहुत ही इस वक्त जो है ये अफसोसनाक मामला है। पाकिस्तान ने तो जितनी लचक दिखानी थी वो दिखा दी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए हल्फे वफादारी में और वो सब कुछ हुआ। मैं और तरह से एनालाइज करता हूँ चीज़ों को, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में, साउथ एशिया के प्रोस्पेक्टिव में। आप देखें इस वक्त दो ही मुल्क हैं जो बराबरी की सतह पे हिंदुस्तान के साथ बात कर सकते हैं, एक पाकिस्तान है और दूसरा श्रीलंका है। बाकी तो माशाल्लाह आपको पता है सारे मतलब वो लेटे हुए हैं। आप अंदाजा करें कि श्रीलंका में कोलंबो के साथ वो एक नया शहर बना रहे हैं, कोलंबो पोर्ट सिटी, इसमें रिक्लेम करेंगे वो समुद्र से जमीन 450 एकड़। ओवरऑल उसकी जो कास्ट निकाली है वो $15 बिलियन है, जिसमें से 1.5-2 बिलियन डॉलर चीनी जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। आपको पता है जनाब मोदी साहब के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो अजीत कुमार डोल या डोवल जो भी हैं, उन्होंने हुक्म दिया है कि इसको बंद करो, क्योंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है इस एक शहर बनने से जो कोलंबो के, कोलंबो में बन रहा है उसकी आप ये समझें कि वो एक्सटेंशन है। कोई पूछने वाला नहीं, उन्हें उनसे पूछा कि आपको कैसे ये आपकी रिजर्वेशन है, आपको क्या सीरियस थ्रेट्स आ गए इस शहर से? कुछ भी नहीं। असल मसला ये है कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक माइंडसेट है वहां पे कि ये सब ऐसे ही हैं छोटे मोटे, इनको हम एक थप्पड़ मारेंगे और ठीक कर देंगे। अभी मोदी साहब गए बांग्लादेश, भाई आप जाए बांग्लादेश, लेकिन वहां पे 10,000 तस्वीरें इंडियन न्यूज एजेंसीज ने जारी की 71 की, ठीक है जी। ये इस खत्ते में अमन अमान और वो, और उसमें उन्होंने बताया बड़े फखर से कि जनाब मैं तो खुद जो मैंने आंदोलन जो है वो इसका किया था और बांग्लादेश मूवमेंट में मैं शरीक रहा था। ये जो इस वक्त मेन शॉट खेल रहा है वो है वो अजीत कुमार डोवल। अब वो खुद ये कहते हैं, वो इंटरनेट पे आप सर्च करें आपको वो मिल जाएगा उनका वीडियो क्लिप, उन्हें नहीं अंदाजा था कि मैं कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाऊंगा। एक जगह पे वो कहते हैं कि मैंने तो जी अपने 7 साल अंडरकवर एजेंट के तौर पे मैंने पाकिस्तान में गुजारे हैं और मैंने दहशतगर्दी क्या वहां पे एक नेटवर्क क्रिएट किया है और वो ये कहते हैं कि तुमने बॉम्बे में ये किया, हम तुमसे बलूचिस्तान छीन लेंगे।
आपके ख्याल में ये एडमिसिबल है इंटरनेशनल फोरम्स के लिए, जैसे पाकिस्तान क्लेम कर रहा है? दूसरी तरफ भारत के पास भी एविडेंसेज हैं उनके बकौल, वो कहता है कि जी वहाँ पे मुंबई अटैक हूँ या उससे पहले कोई सिलसिलावार धमाकों का हो, पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं सिरा जुड़ता है या पाकिस्तान की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन हालात में दोनों तरफ तो मुकदमा मौजूद है, दोनों तरफ उनके अपने तई एविडेंसेस भी होंगे, इंटरनेशनल फोरम्स पे जा सकते हैं, वहाँ पे कोई हल निकल सकता है, क्या हो सकता है आपके ख्याल में?
ये बिल्कुल कोई हल नहीं निकलेगा, मैं आपको बताऊं। ये बड़ी तवक्कुआत ये थी कि बीजेपी जो है ये कांग्रेस की तरह जो है वो जो हिस्टोरिकल वो बैकलॉग लेके नहीं निकलेगी, और जिस तरह वाजपेयी साहब ने कोशिश की थी ये हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये अब और तरह की जो है रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए मोदी साहब, और मोदी साहब जो है वो बजाय इसके कि वो बड़े भाई का किरदार अदा करते, हमारे इनके साथ इशू है क्या? हमारा इनके साथ एक इशू है कि ये कश्मीर का मामला, और कश्मीर का मामला दरअसल पानी से जुड़ा हुआ है। आप वो सॉर्ट आउट कर लें, उसमें 35 फार्मूले तो पेश हो चुके हैं पहले, लेकिन कोई बात करने को और सुनने को ये आमादा ही नहीं है।
सही, हमें एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स प्रताप वंशी साहब ने भी ज्वाइन कर रखा है। प्रताप साहब, आपके नुक्ता नजर, चुके असलम खान साहब की आपने बात सुनी है, सीनियर साफी हैं, कॉलम निगार हैं पाकिस्तान के अंदर।
हाँ, नहीं, असलम खान साहब को मैंने अभी बात सुनी है, नाम भी सुना है, लेकिन मैं कुछ चीजें कह रहा हूँ, कुछ चीजें फिल्टर होकर गलत जाती है। मुझे नहीं लगता कि अजीत डोभाल ने ये कहा है कि हम इससे बड़ा नेटवर्क क्रिएट करेंगे, हम वहां पे ऐसी चीजें करेंगे। मैं कोई उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं अभी अगर मेरी पूरी बात असलम खान साहब ने सुनी हो तो मैं कोई हुकूमत के पक्ष में के बोलने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं वहां पे ऐसी कोई चीज क्रिएट करूंगा। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें सोशल मीडिया हो या पॉलिटिकल चीजें हो, बहुत सारे र्यूमर्स भी दाएं बाएं चलते हैं जो इन चीजों को, जो इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं रोकते हैं। देखिए, हम चाहे जितनी बात करें, कहीं ना कहीं हमें ये जरूरत बार बार याद आएगी कि हमको बात करना ही पड़ेगा। बिना बात दुनिया में आप चाहे जितने हथियार उठा लें, चाहे जितने लड़ लें,
अल्टीमेटली मुजाकरात पे आना पड़ता है,
तो आपको बात ही करनी पड़ेगी ना।
जी, अच्छा सोमवंशी साहब, ये बताइएगा, हम एक अरसा से ये सुनते आए हैं, जब खास तौर पे बहुत ज्यादा एक तरह से जिम्मेदारी डाल दी जाती थी कि अगर वहां पे चपकलेश हो रही है या माहौल साजगार नहीं है तो शायद इसका जिम्मेदार इस्लामाबाद है, और उस वक्त भारत की तरफ से एक नुक्ता नज़र ये बयान होता था कि भारत तो चूँकि एक राइजिंग इकानमी है, वो चाहता है कि खत्ते के अंदर अमन रहे, तभी तो उसकी इकानमी बेहतर हो सकती है। अब जबकि पाकिस्तान से ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि जब से चाइना के साथ कॉरिडोर की बात हो रही है, भारत के लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं हो रही, यही वजह है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर पेनिट्रेशन होती है, ये एक तस्वर उस तरफ मौजूद है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप?
आपको मैं आज के हवाले से रेफरेंस देता हूँ, कांग्रेस के एमएलए हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उस्मान, उन्होंने ये बताया, आज वहाँ उनका बयान चल रहा है, पूरे दिन से चल रहा है, उन्होंने कहा कि साहब वो टाइगर मेमन से उनकी वहाँ पीओके में मुलाकात थी, टाइगर मेमन ने उनको ये चीजें बताई, और वो बाकायदा एक एक चीज, बाकायदा डेट, तारीख, नाम, कौन, कैसे, सारे रेफरेंस के साथ बता रहे हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं, सैकड़ों एविडेंस, सारी चीजें बताई जा रही हैं कि जो ये चीजें हो रही हैं यहाँ पे, उसके लिए अगर वहां से चीजें ये स्पॉन्सर हो रही हैं, वहां पे उस तरह के कैंप चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी चीज को एकदम किनारे रख देंगे और छोड़ देंगे कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कोई चीज नहीं है, और जो कुछ हो रहा है वो एक तरफ से हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इधर अपनी बात कहते रहेंगे, वो उधर अपनी बात कहते रहेंगे, ये अपने वोटरों को समझाते रहेंगे, वो अपने वोटरों को समझाते रहेंगे, और मुझे लगता है दोनों की सियासत चलती रहेगी।
जी असलम खान साहब,
ये देखें, बात ये है कि हमारे यहाँ तो जो पंजाब है, पंजाब एक देश है ना जिसमें एंटी इंडिया वो एक कहानी चलती थी, अब लाहौर में जाएं आप, कोई वहां पे वो सीन बदल गया है, इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है वहां पे कोई इस वक्त एंटी कोई सेंटीमेंट्स नहीं है, लेकिन ये जो बातें हो रही हैं रोज़ाना आप देखें, गोलाबारी हो रही है, इन्होंने LOC पे, इवन इंटरनेशनल बॉर्डर पे उड़ा के रख दिया है, वो अभी पिछले दिनों ऑब्जर्वर गए थे। पाकिस्तान, मुझे आप बताएं कैसे हिंदुस्तान के साथ इस तरह की बढ़ बढ़ के ये जो फरमा रहे हैं वो ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता है। ये सारी थ्योरी मैं आपको बताऊं, ये ऑफेंसिव की सारी, ये जब से ये अजीत कुमार डोल आया है ना, इसकी ये सारी थ्योरी है कि आप जो है वो इनकी जो सॉफ्ट बैली है उस पर हिट करें मुसलसल और इसको नेल्ट डाउन कर दें, ये इस कॉन्सेप्ट पे।
लेकिन खान साहब, जैसे आपने खुद कहा कि पाकिस्तान जाहिर है एक न्यूक्लियर पावर है और शायद इतना आसानी से उसको क्या कहना चाहिए, आर्म ट्विस्टिंग नहीं हो सकती है, मुझे फिर समअप कीजिए, बताइए कि मुस्तकबिल करीब में आप क्या देखते हैं, ये थोड़ी टेंशन में और इजाफा होगा या अल्टीमेट दोनों मुल्क इंगेज करेंगे एक दूसरे के साथ बास टर्म्स एंड कंडीशंस पे?
देखें, जो इस वक्त हो रहा है ना, उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के होते हुए कोई किसी किस्म की कोई पॉजिटिव जो है वो बात आगे बढ़ सकती है। बहुत खतरा इस बात का है। देखें, इसने थ्योरी पेश की है, इसने कहा कि ये जो आप जो है ना वो एटॉमिक वो एंगेजमेंट को भूल जाएं, कोई वो हो ही नहीं सकेगी, हम जो है वो जो हमारा जो ये डिफेंसिव ऑफेंस है उसमें हम इनको जो है वो बिल्कुल पैरालाइज कर देंगे और उसमें हम इनको इंटरनेशनल वो फोरम्स में बदनाम करेंगे, हम टेररिज्म को जो है एज ए जो है पंच जो है वो यूज करेंगे। ये सारी बातें इंटरनेट पे अवेलेबल है, इन्हें कहें भाई को कि ये तलाश कर लें, काम कर लें और वीडियो पे जाए, वीडियो पे सुने। असल हुआ ये है कि ये आदमी 70 साल का है, इसका ख्याल नहीं था कि दोबारा ये पावर कॉरिडोर में आएगा। वो सारी बातें खुल के बयान हो रही हैं, अब तो कोई ये कुली बोल रही है, अफवाह सारी को वो रूमर मांग रही
है। लेकिन खान साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि एक बंदे का दोनों मुल्कों के दरमियान रिलेशनशिप है, शायद एक बंदे के स्टेटमेंट उसको गाइड नहीं कर सकते हैं, प्रताप सोमवंशी साहब इसको सम अप कीजिएगा, आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं, दोनों मुल्क के साहिब के बाद वापस आएंगे या ये बढ़ेगी कशीदगी?
मैं अफजल खान साहब को बिल्कुल मैं उनको सलाम कहता हूँ और मुझे ये भी कहता हूँ मैं कि ये आप देखिए इतना पॉसिबल नहीं है जैसा आप ही ने कहा कि अजीत डोवाल को ही अगर हम नाम में ले लें तो इतने बड़े किरदार इस देश में सारी हुकूमत के परे, सारी पार्टियों के परे, सारे पॉलिटिकल सिस्टम के परे, क्यों इतने बड़े किरदार हो गए कि वो मुल्कों के बीच में बातचीत रुकवा देंगे, वो जैसे चाहेंगे वैसे फौजें काम करेंगे, वो जैसे चाहेंगे वैसे पॉलिसीज में काम होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो चीजें आगे बढ़ती हुई दिखती थी वो ठहरी हैं, लेकिन मैं फिर आपको दावा करता हूँ, मैं पिछले कई वर्षों से आपके शो पे रहा हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए बोलता रहा हूँ, मैं फिर आगे भी बोलूंगा और इस हवाले से बोलूंगा कि हाँ, ये पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, फिर वो आगे तमाम सारी बातचीतें होंगी और हम यही दुआ करते हैं कि बातचीत जल्दी हो और बेहतर।
बहुत शुक्रिया आपका प्रताप सोमवंशी साहब, एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, आपने हमें ज्वाइन किया। असलम खान साहब, आपके हम मशहूर हैं, सीनियर साफी तजियाकार, इस्लामाबाद से आप हमारे साथ मौजूद रहे। स्वामी ने एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे बलूचिस्तान सिक्योरिटी की रिपोर्टली बेहतर होती हुई सूरत हाल और वहाँ से तरके इलाका करने वालों की तादाद में कमी, एक ब्रेक के बाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urdu.voa.com।
हम जहांग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, प्रोड्यूसर हैं अंजुम हेरल गिल और उनके साथ हमारी इंटर्न लीला ओझा मौजूद हैं, जैक्सन वेड्स और कीथ होम्स हमारे इंजीनियर्स हैं। बात हम करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में बलूचिस्तान से, नकल मकानी का सिलसिला, इतलात ये मिल रही हैं कि वो रुक रहा है, काफ़ी हद तक उसमें कमी आ चुकी है। वो लोग जो टारगेट किलिंग से तंग थे और वो ख़ानदान जिन्होंने पिछले कुछ बरसों में तकरीबन 5,000 ख़ानदानों ने या अफराद ने वहाँ से नकल मकानी की है, इतलात ये मिल रही हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होने के सबब ये सिलसिला रुक चुका है और वो भी बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ चले गए थे अब वापस आना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब सरफराज बुगटी साहब, होम मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, और प्रोफेसर डॉक्टर नादिर बख्श साहब हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, और उनका शुमार भी उन लोगों में होता है जो बलूचिस्तान की सूबे के साथ, उसकी ज़मीन के साथ बहुत वाबस्तगी रखते हैं, बहुत मोहब्बत रखते हैं, लेकिन हालात के सबब उन्हें भी नकल मकानी करना पड़ी और वो बलूचिस्तान से वापस पंजाब के इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। सरफराज बुगटी साहब, क्या कहेंगे, आपकी गवर्नमेंट को क्रेडिट दिया जाए उन्होंने सिक्योरिटी बेहतर की है, या और वो क्या वजूहात बनी हैं जो इस बेहतर होती हुई सिक्योरिटी को بنیادی طور پہ انگیج کرتی ہیں؟
سب سے پہلے تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے شرمندہ ہوں ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں رسول بخش صاحب کے سامنے کہ وہ بلوچستان سے محبت کرتے ہیں اور حالات میں ان کو مجبور کیا کہ انہوں نے یہاں سے نقل مکانی کی, اور کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے انٹلیکچوئلس کو, اپنے ٹیچرس کو, اپنے ڈاکٹرس کو, اپنے انجینئرس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا یا نقل مکانی کرنے پہ مجبور کیا. تو اس پر تو مجھے ظاہر ہے شرمندگی کے علاوہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. اب ان ساری چیزوں کے کوئی بیک گراؤنڈ ہی ہیں, اگر ہم ان بیک گراؤنڈ میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس ایشو کو سب سے پہلے تو سمجھا نہیں گیا ہے, کیا سیٹلر کی بنیاد پر لوگوں کو جس طرح قتل کیا گیا ہے ماضی میں وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن کیونکہ اب ایک چیز ہو چکی ہے اور جب سے ہم نے گورنمنٹ سنبھالی ہے, کریڈٹ آپ صرف اگر ہماری گورنمنٹ کو دیں گے تو وہ انتہائی نامناسب سی بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آ کے تو صرف سیریسنس دکھائی ہے اور اس ایشو کو باقی ماندہ پاکستان کو انڈرسٹینڈ کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کوئی ناراض بلوچ نہیں ہے, یہ بھی ایسے ہی دہشت گرد ہیں جو بھی وائلنس کرتا ہے جیسا کہ مذہب کے نام پر لوگ وائلنس کرتے ہیں اور ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کریڈٹ گورنمنٹ کا یقیناً ہے, ساتھ ساتھ ہمارے جو سیکورٹی اپریٹس ہیں جس کو فیڈرل گورنمنٹ کی فورس فرنٹیئر کور ہے ان کا بڑا ایک وائٹل رول رہا ہے, ان کی بڑی قربانیاں رہی ہیں ہماری سیکورٹی ایجنسیز کی, پولیس کی, لیڈیز کی. تو ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد یہ انوائرمنٹ پیدا کی ہے کہ آج اللہ کے فضل سے لوگ
واپس آ رہے ہیں. ہمارے جو ایک فارمر وہاں پہ منسٹر بھی تھے ہندو برادری سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی اس کو انکریج کر رہے ہیں, لیکن جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان کے کنسرنز یا خدشات اب بھی بہرحال موجود ہیں, کیا آپ ان کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں یا کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے میں بعض اوقات ظاہر ہے ان کی بہت بڑی میس کلنگ ہوئی ہے, میں اس پر بھی مجھے افسوس کا اظہار ہے, لیکن جس ترتیب کے ساتھ اور جس تیزی کے ساتھ ان کی کلنگ ہو رہی تھی یہاں پر اور ایک ایک بم دھماکے میں سو سو لوگ مر رہے تھے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو آن نہیں کر رہی تھی, وہ سلسلہ تو یقیناً رک گیا ہے. ساتھ ساتھ آپ اس سے اندازہ لگائیں ہماری سیریسنیس کا یا ہمارے ایشو کو سمجھنے کا اور اس کو ایڈریس کرنے کا کہ وی مینج ٹو کل ٹاپ لیڈرشپ آف لشکر جنگ بھی ہے کوئٹہ, جس میں کرد صاحب تھے, کرد تھا اس کا سیف کرد شاید نام تھا, وہ مارا گیا, پھر اسی طرح محمود الرحمان رند مارا گیا. تو یہ تمام وہ لوگ جو ہزارہ
سیکٹیرین بیسس
پہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے میں سمجھتا ہوں اور مقابلے میں مارا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی بہت ایفرٹس کی ہیں, بہت اس سلسلے میں بہت قربانیاں دی ہیں, تب جا کے یمن ریسٹور ہوئے اور ہزارہ
جی. پروفیسر نادر بخش صاحب, ایک تو انہوں نے ذاتی طور پہ آپ سے معذرت بھی کی ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اتنے بڑے ایجوکیشنسٹ وہاں سے چلے گئے جو وہاں پہ تعلیم دے رہے تھے, اس کو بھی رسپونڈ کیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ اب آپ کو کیا اطلاعات مل رہی ہیں, کیونکہ آپ بھی تو کانٹیکٹس ہوں گے, صورتحال بہتری ہو رہی, بہتری آ رہی ہے, اور بہتری اگر آ رہی ہے تو کیا آپ کے جیسے ایجوکیشنسٹ واپس اس زمین پہ جانا چاہیں گے؟
صاحب میں نے وقتی صاحب کی بات کو سنا, یہ میرے بیٹے ہیں, میں نے اپنی اولاد سمجھتا ہوں اور ماتھا چومتا ہوں ان کا کہ ان لوگوں نے محنت کی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے, کوئی دوسری رائے اس میں نہیں ہے. ظاہر ہے کہ لوگ مارے گئے, جو بچ گئے وہ نکل آئے, ہم بھی ان میں سے ہیں جو بچ گئے, ہمارے ساتھی کئی مارے گئے, ہم لوگ نکل آئے. اور بلوچستان یا کوئٹہ میری ماں ہے, میری جگہ ہے, اور آج بھی میرا دل و دماغ وہیں ہے. جس طرح سے وہیں پر ہمارے انہی بلوچ ساتھیوں نے ہی ہم سے کہا تھا کہ مارے جاؤ گے اور تمہارا جنازہ اٹھانا ہمارے لیے بہت بھاری ہوگا, مشکل ہوگا, بہتر یہ ہے کہ حالت ایسی ہے کہ اس میں سے چلے جاؤ. تو جن ساتھیوں نے جس طرح سے پرنام آنکھوں سے کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ, اگر وہ کہیں گے کہ واپس آ جاؤ تو ناظر ایک بار نہیں سو بار آئے گا, اور ایسے ایک ناظر سو ناظر آئیں گے. اب رہ گئی بات یہ کہ حالات پہلے سے بہتر ہیں, کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ حالات پہلے سے بہتر ہیں, اور اس کی کیا محرکات رہے وہ اس وقت شاید موضوع نہیں ہے کہ وہ کیوں حالات بہتر ہو رہے ہیں, لیکن یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. اور وہاں سے جو لوگ نقل مکانی کر رہے تھے وہ سلسلہ تقریباً رک چکا ہے, اور اب لوگ وہاں سے, کیونکہ اپنی جگہ اپنے بس سے گھر تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا, اور اپنی مادر جگہ کو کوئی بھی نہیں چھوڑتا, اپنی دھرتی کو چھوڑ کے صرف کوئی اس وقت جاتا ہے جب پتا ہے کہ سامنے یہ صورتحال ہے. تو نقل مکانی کا سلسلہ تقریباً رک چکا, اب اگر کوئی نقل مکانی کرتا ہے تو فیئر اس کی وجہ نہیں ہے, کوئی اور وجہ کوئی ہو سکتی ہے, کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ صورتحال پہلے سے تو بہت بہتر ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے.
Exactly.
اور ان لوگوں کی ہمت افزائی کرنی چاہیے, ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو لوگ اس میں محنت کر رہے ہیں.
بکٹی صاحب, ہمارے پاس 20-25 سیکنڈ ہے, سم اپ کیجیے گا. کیا آپ نادر بخش جیسے انٹلیکچوئلز کو واپس لانے کے لیے شعوری کوششیں کریں گے, کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے, میں نے تو ایک پلان اپنی گورنمنٹ کو یہ بھی دیا تھا کہ ہمیں ان تمام حضرات کو, میں بیسیکلی آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ ایک لفظ یوز ہوتا ہے سیٹلر, آئی ہیٹ دس ورڈ پرسنلی, بس ان کو, کیونکہ یہاں پر کوئی بلوچ پشتون نہیں ہے, ہم سب پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں, تو ہمارے جو بھائی یہاں سے نقل مکانی کی انہوں نے, تو میں تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کر.
ہمیں ایک چند سیکنڈ کی بریک لینی ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر انجو میرل گل, اور ہمارے ساتھ انجینئر میں شامل ہیں جیکسن ویٹس اور کیتھ ہومز. ہماری انٹرن لیلا اوجا اس وقت انجم کو ہیلپ کر رہی ہیں. پچھلے سیگمنٹ میں ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں بلوچستان کے اندر نقل مکانی, جس کے بارے میں اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ وہ سلسلہ رک چکا ہے, اور سیٹلرز جو ہیں, جو یہاں سے حالات کی خرابی کے سبب نقل مکانی کر گئے تھے, ان میں سے کچھ لوگ واپس آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ ہوم منسٹر موجود ہیں بلوچستان کے, جناب سرفراز بگٹی صاحب, اور پروفیسر ڈاکٹر نادر بخش صاحب, ایجوکیشنسٹ اور سوشل سائنٹسٹ, جو حالات ہی کے سبب بلوچستان سے محبت کے باوجود نقل مکانی کر گئے تھے, اس وقت موجود ہیں. یہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہونے والا ہے, اس سے پہلے ہم بات کر چکے پاکستان اور بھارت تعلقات پہ. بگٹی صاحب, اپنی بات آپ مکمل کیجیے گا, کیونکہ اس کے بعد پھر ہم اگلے سیگمنٹ پہ جا سکیں گے. جی, آپ نے آپ وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو کوشش ہے, اور ہم تجویز دے رہے ہیں کہ سیٹلرز نہ کہا جائے ان کو.
جی, اب ظاہر ہے سیٹلر نہ کہا جائے, سیٹلر کا لفظ ہی غلط ہے, اور اس طرح دیکھا جائے تو پھر سارے مسلمان دنیا میں جدھر بھی جدھر بھی بچتے ہیں وہ سب کے سب سیٹلر ہیں, کیونکہ اسلام تو ایک چھوٹی سی ویلی ہے, اور وہ پھر تو سب کو سیٹلر کہیں, میں اور آپ بھی سیٹلر ہیں. تو بات یہ ہے, یہ ہماری دھرتی کے باشندے تھے, ہمارے بھائی تھے, صدیوں سے ہمارے ساتھ رہ رہے تھے. ان کا رسم رواج, نام, رہن سہن, پہننا اوڑھنا سب بلوچوں کے ساتھ تھا, بلوچستان کے ساتھ تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہمیں ان کی ضرورت ہے, ان انٹلیکچوئلس کی ضرورت ہے, ان ٹیچرز کی ضرورت ہے, ان ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. کاش یہ قوم اس وقت اس طرح شور مچاتی. ملالہ یوسفزئی سے میری تمام ہمدردیاں ہیں, معصوم سی بچی ہے, لیکن کاش یہ میڈیا, مین اسٹریم میڈیا اس وقت اتنا شور مچاتا جب پروفیسر ناظمہ طالب کو کوئٹہ میں قتل کیا گیا 2009 میں, تو شاید ملالہ یوسفزئی والا واقعہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ کرتا. لیکن کیونکہ یہ تاریخ کے اب حصے رہ چکے ہیں, ہماری نادانیاں, ہماری کوتاہیاں وہ صرف تاریخ میں شرمندگی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں دیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو واپس آنے کی ضرورت ہے, اور ہم کوئٹہ کو, بلوچستان کو, اپنے پروفیسرز کی, اپنے ٹیچرز کی, اپنے کاروباری حضرات کی, اپنے بڑے بھائیوں کی اور ماؤں بہنوں کی بہت سخت ضرورت ہے واپس کوئٹہ میں.
جی پروفیسر نادر بخش صاحب, کافی ایموشنل یہ لمحہ ہو گیا اس سنس میں. میں چونکہ ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کتنے ایسوسیٹ تھے, اور جن دنوں میں آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو آپ کس کرب میں تھے, تو اب آپ اس کو سم اپ بھی کیجیے گا اس سیگمنٹ کو, اور کیا وہ ایشیورٹیز ہوں گی جس کی بنیاد پہ آپ واپس جانا چاہیں گے؟
صاحب, شیورٹیز کچھ بھی نہیں ہوتی, یہ دلوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو جس طرح سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہمارے دوستوں نے, ہمارے ساتھیوں نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, بچو نہیں, جان تمہاری ایسی ہی ہے, تو وہی ساتھی جب اپنے طور پہ اسی محبت سے کہیں گے کہ واپس آ جاؤ تو ہم واپس آ جائیں گے. اور باقی رہ کے حکومت کی گارنٹیاں تو کچھ نہیں ہوتی نا, وہ تو باتیں کچھ بھی نہیں ہوتی. یہی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, ساتھی تھے, اسٹوڈینٹس تھے ہمارے, بلوچ تھے, پشتون تھے, جو سب کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ چلے جاؤ, نہیں بچو گے, مرے ہو گئے, یہاں تیری لاش پڑی ہوئی ہوگی, اور وہ ہمارے لیے ایک سخت وقت ہوگا تمہیں اس طرح سے اٹھانا اور ڈبے میں بند کر کے واپس بھیجنا. ہمارے لیے
نہیں, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی, آپ کی جو کمٹمنٹ ہے, آپ کا جو پیشن ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں.
اگر کہیں گے تو ہم واپس آ جائیں گے, ہمارے لیے کیا مسئلہ سر, اپنی جگہ ہے.
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ڈاکٹر نادر بخش صاحب, ایجوکیشنسٹ, سوشل سائنٹسٹ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور ہوم منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے جو آج کی ٹاپ اسٹوری ہے, افغان طالبان کی قیادت میں تبدیلی, اس کے اثرات کیا ہوں گے آن گوئنگ پیس پروسیس پہ اور افغان حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات پہ, اور ساتھ ساتھ ہم جائزہ لیں گے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش, اس کو یہاں پہ جو جنگجوؤں کے درمیان اگر تفاوت ہوتی ہے یا وہاں پہ تقسیم ہوتی ہے تو کتنا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے ایک ایسی تنظیم جس پہ ہیوی بمبارٹمنٹ ہوئی پچھلے ایک سال میں، لیکن اس کے باوجود یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط گراؤنڈز پہ کھڑی ہے. ایک بریک کے بعد. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر انجم ایرل گل اور لیلا اوجھا ہماری انٹرن ان کے ساتھ موجود ہیں. بات ہم کریں گے اس حصے میں جہاں پہ طالبان کی قیادت میں، افغان طالبان کی قیادت میں تبدیلی کی اطلاعات آ رہی ہیں اور ملا عمر ان کے انتقال کی خبریں، مختلف ذرائع سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بہت درست ہیں اور افغان طالبان کی اپنی طرف سے بھی جو سٹیٹمنٹ آیا اس میں یہ قبول کیا گیا ہے کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے، لیکن ان کا زمانہ یا وقت یہ ابھی اس کا کنفرم نہیں ہے. متضاد اطلاعات ہیں. افغانستان کے انٹیلیجنس آفیشلز یہ کہتے ہیں کہ ان کی موت کراچی میں واقع ہوئی تھی، جبکہ طالبان اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے طور پہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ موت کب کہاں کیسے ہوئی یا ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جو متبادل قیادت ہیں ملا اختر منصور، ان کو الیکٹ کیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق طالبان کے نئے قائد کی حیثیت سے، اور ان کے ڈیپٹیز منتخب کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک کا تعلق حقانی نیٹورک ساتھ ہے، سراج الدین حقانی، اور ملا ہیبت اللہ، ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کے اب ڈیپٹیز ہوں گے، نائبین ہوں گے. اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ پرو ڈائلاگ ہیں، طالبان کے مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہارڈ لائنر بھی ہیں. آگے چل کے صورتحال کیا پیدا ہوگی یہ ہم اپنے NLS سے پوچھیں گے، لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے جیمز ڈوبنز، امریکہ کے سابق خصوصی نمائندہ برائے افغانستان اور پاکستان، ان سے ہماری افغان سروس نے گفتگو کی ہے اور ان سے کچھ سوالات اسی بارے میں اٹھائے ہیں کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کا کیا فرق پڑے گا ان مذاکرات پہ جن کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. کیا کیا جو جیمز ڈوبن نے، آئیے سنتے ہیں.
It's a little early to predict what exactly the influence is going to be. Certainly Mullah Omar was a unifying figure for the Taliban and somebody who
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اندازہ لگانا بہرحال ابھی مشکل ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا. بلا شبہ وہ بڑے فگر تھے، طالبان کے اندر اتحاد کی ایک علامتی حیثیت رکھتے تھے اور عام افغانوں کے اندر بھی ایک خاص حد تک ان کا احترام موجود تھا، اور اسے طالبان کی عادت کے اندر اب پھوٹ پڑ سکتی ہے اور بعض طالبان جنگجوؤں کے حوصلے بھی پست ہو سکتے ہیں. اس سے تشدد کی لہر میں جہاں کمی آئے گی وہاں امن مذاکرات میں بھی کچھ مشکل آ سکتی ہے کیونکہ طالبان منقسم ہوں گے. جب ان سے یہ دوسرا سوال پوچھا گیا کہ کیا ملا اختر منصور انتہا پسندی کی جانب مائل ہوں گے یا وہ اعتدال کی طرف آئیں گے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے طالبان کی ہرارکی میں اہم اور با اثر لیڈر رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا سنوا سکیں جیمز ڈوبن کی آواز
کو.
ان کے الفاظ ہیں کہ وہ عسکریت پسندوں کو مؤثر انداز میں عسکریت پسندی کی مہم چلاتے رہی ہیں، لہٰذا میں ایک لحاظ سے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں دیکھتا ہوں. میں ملا منصور کو ایک اعتدال پسند نہیں بلکہ ایک سخت گیر رہنما کے طور پر دیکھتا ہوں.
So if Mansour emerges as the leader, I don't know that it would make much difference since he's been the effective leader for several years, except that it may make
جی سامعین، یہ جیمز ڈوبنز تھے، امریکہ کے خصوصی نمائندے افغانستان اور پاکستان کے لیے. افغان سروس نے ان کو انٹرویو کیا تھا، وہاں سے ہم نے کچھ اقتباسات آپ کو سنوائے. انالیسس کے لیے چودھری نعمان ظفر ہمارے ساتھ ہیں، ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے. فیصل محمد ہمارے ساتھ ہیں، ریسرچ فیلو ود سینٹر آف انٹرنیشنل اسٹڈیز اسٹڈیز اسلام آباد. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. نعمان، کوئکلی، کیونکہ کافی دیر ہم آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، ٹرانزیشن افغان طالبان لیڈرشپ کے اندر کیا اثرات ہوں گے ان مذاکرات پہ جن کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے؟
देखिए जब कुछ अभी हालात सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों में कि कुछ लीडरशिप की ट्रांजिशन की तरफ इन्होंने जरूरत महसूस की है, कुछ खबरें ये आ रही हैं कि मुल्ला उमर जो है ना वो सीट से हट गए हैं, कोई कैदी शहीद हो गए हैं, कुछ गायब हो गए, तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि इनकी बहुत ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मतलब कहा जाता है कि मतलब जो भी फैसला करते थे ये शूरा की मर्जी से, शूरा के साथ मशावरत के साथ ये करते थे, और इसी दौरान आपने देखा पिछले कुछ महीनों के अंदर जो नेगोशिएशंस चले हैं पाकिस्तान ने भी उनको सपोर्ट किया और इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो एक एक देखिए थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है कि देखिए एक बड़ा लीडर जो एक मूवमेंट को लीड कर रहा होता है उसके अपने ख्यालात होते हैं, उसकी अपनी सोच होती है, उसके अपने बिलीव्स होते हैं, थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज्यादा कोई मतलब 180 डिग्री कोई जंप हो जाएगा या कोई सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो अफगान तालिबान के जो जितने भी कैडर्स हैं वो चाहते हैं कि भी किसी तरीके से जो है ये मामला
अब मुज़ाकरात की तरफ जाएं,
लाए जाएं और मतलब जंग से हटा जाए। तो और आपने देखा कि जो मतलब कतर के अंदर उनका ऑफिस का खुलना और दूसरे जो मामला है
वो सारा इसी को रिफ्लेक्ट करता है। नुमान हमारे साथ रहेगा,
एक तरह से एग्रीमेंट है कि मतलब मफाहमत की तरफ जाया जाए और किसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ताउन किया जाए।
जी फैसल, आपका भी नुक्ते नजर इसी पे लेना चाहूंगा, लेकिन एक और जो डेवलपमेंट मीडिया में रिपोर्ट हो रही है कि जलालुद्दीन हकानी जो कि मुमकिना तौर पे या मुबैना तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो हकानी नेटवर्क जिसकी बेसिस हैं उनके भी इंतकाल की खबरें आ रही हैं, और इसके साथ जुड़ा हुआ मामला ये है कि सिराजुद्दीन हकानी उनको नायबीन में से एक मुकरर किया गया है अफगान तालिबान के नए कायद मुल्ला अख्तर मंसूर का, क्या इम्पेक्ट होगा इसका? जी फैसल, फैसल मोहम्मद आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? फैसल हमारे साथ हैं लेकिन मेरी आवाज़ गालबन उन तक नहीं पहुंच पा रही या उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। फैसल आप मुझे सुन सकते हैं? जी लाइन ड्रॉप हो गई। जी चौधरी नौमान ज़फ़र आप इसी को बताइएगा, आज जलालुद्दीन हकानी की भी इत्तला की मौत की या इंतकाल की खबरें पाकिस्तानी मीडिया ने दी हैं, कन्फर्म नहीं है, तस्दीक नहीं है, वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, आप क्या कहेंगे? ये सारे इंसिडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ किस हद तक कनेक्टेड नज़र आते हैं आपको?
देखिए जब गौर से इसको देखा जाए तो मतलब दो तरह की डायमेंशन इसकी बनती हैं। अगर हमको मतलब ये देखा जाए कि नहीं इनको जानबूझ के मतलब सी से हटाया जा रहा है तो वो तो बिल्कुल एक आपको कड़ी से कड़ी मिलती हुई नजर आती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इस तरीके से इसको देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरीके से इसको देखेंगे तो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है उनकी जो नैरेटिव है वो मजबूत हो जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो मुल्ला उमर का हटना और इनका मतलब सीन से हटना ये कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन अगर हट भी जाते हैं, क्योंकि मुल्ला उमर के बाद इन्हीं का नाम लिया जा रहा था, लेकिन अगर हट भी जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हकानी के साथ मतलब बहुत ज्यादा ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के एलिमेंट्स कुछ हैं जो इनको एक्सेप्टेबल हैं, ये हकानी जो है अगर मतलब अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऐसी बनती है जिसमें तालिबान आते हैं तो तालिबान का भी सपोर्ट हकानी को था, हकानी का सपोर्ट तालिबान को था, और पाकिस्तान के जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट में हल्के थे जो वो भी चाहते थे कि हकानी जो है वो किसी न किसी तरीके से पावर में रहें। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इनका दोनों साहिबान का हटना तो तीसरी एक कोई ऐसी पर्सनैलिटी सामने आएगी जिसके ऊपर कंसेंसस होगा, जिसमें अफगान तालिबान का भी सपोर्ट हो, जिसके अंदर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है काबुल में उसका भी सपोर्ट हो, और जिसके और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी।
जी नौमान हमें फैसल ने भी ज्वाइन किया, क्विक कमेंट्स में जरा उनके भी ले लूँ चूंकि मुझे सेगमेंट को 3 मिनट के अंदर वाइंड अप करना है। फैसल आपका बहुत शुक्रिया, काफ़ी देर बाद आपसे रब्ता हुआ, कुछ सिस्टम में भी मसाइल थे। आपने इन डेवलपमेंट्स को कैसे लिया है, अफगान तालिबान की क़यादत में तब्दीली, मुज़ाकरात पे इसका असर और जलालुद्दीन हकानी की भी मौत की खबरें?
बहुत शुक्रिया अज़र साहब। सब पिछले 2-3 दिन के अंदर अफगानिस्तान और उससे मुतलका मामलात में जितनी डेवलपमेंट इतलात सामने आई हैं उसमें एक आप ये कह सकते हैं कि जोहरी तब्दीली के बिल्कुल उलट दिए हैं मामला। पहले हमें लग रहा था कि आज जुमे वाले दिन दूसरा दौर मुज़ाकरात का होगा और उससे पहले खबरें आ रही थी कि परमानेंट सीज़फ़ायर की तरफ मामला जाएंगे, लेकिन मुज़ाकरात मुल्तवी हो चुके हैं। जलालुद्दीन हकानी की जो मौत की खबर है, अगर ये सच है और अगर ये پتہ لگتا ہے اگلے آنے والے دنوں میں کہ واقعی ہی زیادہ سرکاری نہیں رہے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پرٹیکولرلی پاکستانی ملٹری کی جو پالیسی رہی ہے پچھلے 10 سال میں اس کے لیے سب سے بڑا سیٹ بیک ہے افغانستان پالیسی کا, کیونکہ حقانی نیٹورک پاکستانی ملٹری کا وہ والا مہرا تھا جس کے اوپر انہوں نے افغانستان میں انفلوئنس قائم رکھنا تھا. ساؤتھ کے اوپر پروونسز وہ حقانی نیٹورک کے کنٹرول میں تھے, پکتی تھیا خاص طور پہ جس کی سرحد پاکستان کے ساتھ لگتی ہے. اور جو جہاں تک معاملہ رہا ملا عمر کی موت کا اور اس کا سامنے آنا, اس کا معاملہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس طرح رسپونڈ کرنے کی کوشش کی ہے, پہلے تو شاک میں چلے گئے, ایک دن تو پورا خاموشی طاری ہو گئی, اس کے بعد طالبان کونسل کی شورا کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, ان کے آپس میں پھر یہ اعلانیہ سامنے آتا ہے کہ طالبان پہلے ذبیح اللہ مجاہد وہ یہ کہتے ہیں, وہ انکار کرتے ہیں ملا عمر کی موت سے, پھر بعد میں وہ ایک دن بعد وہ تصدیق بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ ایک بہت بڑا اعلامیہ سامنے آتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, اور پھر یہ خبریں بھی سامنے آتی ہیں کہ جب شورا کی مذاکرات چل رہے, ان کی میٹنگ چل رہی تھی, تب بھی اختلافات پیدا ہو گئے تھے شورا کے ممبران.
یہ زیادہ تر حلقوں میں یہ اینٹیسپیٹ ہو رہا ہے کہ اختلافات زیادہ ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا فیصل محمد, آپ نے جوائن کیا. چودھری نعمان ظفر, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ دو اور پینلسٹ ہوں گے جن کا ہم نے پہلے سے انٹرویو ریکارڈ کر رکھا ہے, اور ان سے ہم اسلامک اسٹیٹ یا داعش اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس کا بڑھتا ہوا اثر یا دائرہ کار.
پاکستان جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم, اور اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے, افغان طالبان کی قیادت میں تبدیلی اور افغان طالبان کی افغان حکومت یا کابل حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات, اس پہ کیا اثر پڑے گا. اور ساتھ ساتھ ہم اس میں جائزہ لیا اپنے مہمانوں سے یہ بھی سوال کیا ہے کہ اگر طالبان کے درمیان یہاں پہ تفریق ہوتی ہے تو اس ریجن کے اندر وہ داعش کتنی مؤثر ہو سکتی ہے یا اس کو کچھ گروپوں کی سپورٹ مل سکتی ہے, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ پچھلے سال ہیوی بمبارٹمنٹ کے باوجود اس کا جو وہ کمزور نہیں ہوئی ہے. اور یہ کرٹیسزم ہے, یہاں پہ تنقید بھی ہو رہی ہے, اس پہ انالسٹ بات بھی کر رہے ہیں, اور بعض لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ صدر باراک اوباما کی لیگیسی پہ جب بات ہوگی تو جب مشرق وسطی پہ نظر ڈالیں گے تو داعش کا ایمرج ہونا ان کے لیے کوئسچن مارک یا سوالیہ نشان ہوگا. ایسوسیٹڈ پریس نے آج کی یہ رپورٹ دی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ہیوی بمبارٹمنٹ کے باوجود وہ کمزور نہیں ہوئی اور پہلے سے زیادہ یہ تنظیم اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے. ہم نے بات کی ہے اس پہ, ہمارے ساتھ تھے عبد الرشید وزیری صاحب, ریجنل اسٹڈی سینٹر کابل بیس تھنک ٹینک ان کے ساتھ وابستہ ہیں, ان سے ہم نے ان دونوں ڈیولپمنٹس پہ بات کی, آئیے سنتے ہیں. وزیر صاحب بہت شکریہ آپ کا, وائس آف امریکہ کے لیے آپ نے وقت نکالا. ملا عمر کی انتقال یا ان کی موت کی خبروں کے بعد افغان طالبان کی لیڈرشپ میں, ان کی قیادت میں تبدیلی آئی ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے جو آن گوئنگ پروسیس ہے پیس ٹاکس کا جن کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, کیا اس کو اس پہ فرق آ سکتا ہے؟
یہاں پہ ہم جو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں, لوگ بہت امیدوار تھے کہ جو مذاکرات امارات میں ہو رہے تھے
جی,
وہ اس سے کچھ نتیجے نکلا جائے گا, لیکن اس میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ملا عمر جو اصلا زندہ نہیں تھا, یہ معلوم نہیں ملا عمر کو کسی نے نہیں دیکھا ہے, اور یہ مردہ اور زندہ کا لوگ اس سوچ میں نہیں تھے. لیکن ایک تبدیلی یہاں اس خطے میں آ رہی ہے, اس جدید حالات کے لیے جدید آدمی کی ضرورت تھی, تو یہ جدید آدمی جو ہے ملا عمر کے بعد وہ منصور جنہوں نے لوگوں نے اس پہ ہاتھ رکھا ہے, پاکستان بھی اس کے ساتھ خوش ہے, افغانستان بھی, یہ مذاکرات جو پیس کے لیے ہو رہی ہے وہاں, یہ لوگ اس کے لیے پر امید ہیں, امریکہ بھی یہی چاہتے ہیں, اور سارے ہمارے ارد گرد جو ماحول بنا ہے یہاں بنا ہوا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ مذاکرات جو پروسیس تھا وہ پروسیس آگے چلا جائے اور کچھ نتیجہ دے.
صحیح,
تو ابھی تک جو مذاکرات ہوئے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا.
ٹھیک ہے, تو کیا ملا منصور کو افغانستان کے اندر
لیڈر نہیں تھا, वो मतलब उमर जो है वो उस दुनिया चला गया था,
सही।
अभी उस डेट स्पेयर आदमी जो नहीं है अभी,
जी हाँ, तो वो मुजाकरात को कैसे गेज करेंगे? तो ये बताएं कि मुल्ला मंसूर जो हैं उनके बारे में क्या ख्याल किया जाता है, वो मुजाकरात के हामी हैं और क्या वो मंजर आम पर रहेंगे या वो पसे पर्दा रह के मुजाकरात की हिमायत करेंगे?
बात ये है कि यहाँ सिक्योरिटी को वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल और अमेरिका के साथ ये इन लोगों का अगर कुछ वहाँ पे कुछ बैकग्राउंड है तो वो बात करेंगे। अमेरिका कर सकता है कि अगर किसी एक उस लिस्ट में शामिल हो उसको उसे निकाला जाए और मुजाकरात के लिए रास्ता हमवार करे, तो वो सुपर पावर है अमेरिका मेरे ख्याल में
जी। नहीं, अमेरिका ने तो महकमा खारजा ने आज भी स्टेटमेंट दिया है, महकमा खारजा तो आज भी कह रहा है कि तालिबान पे जोर दे रहा है कि वो जो मुजाकरात काबुल के साथ हो रहे हैं उसके उनके साथ वो जुड़े रहें, उनसे मुनकता ना करें। लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये कि क्या मुल्ला मंसूर उनके बारे में अफगानिस्तान में क्या समझा जाता है, वो मुजाकरात के हामी हैं नंबर एक, और क्या वो मंजर आम पर आएंगे या वो भी पीछे रह के इन मुजाकरात में किसी हद तक अटैच होंगे, जुड़े होंगे?
अच्छा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारे नज़र में वो मंजर आम पे आएगा, वो मुज़ाकरात में भी हिस्सा लेगा बिलाखिरा। अगर दुनिया को ये मंजूर है कि यहाँ पे पीसफुल माहौल यहाँ पे बरकरार हो जाए तो इसके लिए जो मुराहत है या जो कर सकते हैं वो करें। यहाँ पे लोग इसके लिए उम्मीदवार हैं। मैंने जो जिन लोगों से पूछा है, अभी जो आपने फोन किया तो लोगों ने फेसबुक पे और जो वसाइल है यहाँ वसाइल
कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं,
उन लोगों ने ये इतला दे दी कि मुल्ला मंसूर अच्छा आदमी है, वो मुज़ाकरात बढ़ाएंगे और इससे अफगानिस्तान को उम्मीद है कि यहाँ पे पीस आ जाएगा,
ठीक है।
और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो फर्रा था कबलन उसमें तब्दीली आ चुकी है और आइंदा ये आगे बढ़ जाएगा, यानी दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ एक इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन में काम करेंगे, वही अच्छी बात है
जी।
इससे लोग खूब
आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा जी। आखिरी बात पूछना चाहूँगा, चीन भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा है, पिछले मुज़ाकरात जो मरी में हुए उसमें चीन ऑब्जर्वर था, अमेरिका ऑब्जर्वर था, तो चीन की मौजूदगी क्या मज़ीद यकीनी बनाती है कि ये मुज़ाकरात किसी नतीजे की तरफ जाएंगे?
जी जी, चीन भी इस खत्ते में एक सुपर पावर है, उसका कुछ हिस्सा बन सकता है और बनेगा। चीन भी इस मुज़ाकरात में, क्योंकि अफगानिस्तान ने पहले भी हमारा जो बड़ा है वो प्रेसिडेंट चीन गया था और चीन से ये तवक्को किया कि आप वो ख्वाहिश की बल्कि आप पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ाएं कि वो नतीजे निकले कुछ हम आगे जाएं।
सही।
दूसरा ये कि चीन इस खत्ते में रेशम का जो हाईवे है उस हाईवे के लिए वो विचार बहुत पुरुमीद है, तो दुनिया भी इस खत्ते में जो मुनाफा अमेरिका का है, यूरोप का है, वो उसको मद्देनजर रखते हुए कोई हल ऐसा निकला जाएगा जिससे पाकिस्तान भी खुश हो, अफगानिस्तान भी खुश हो। मेरे ख्याल में अगर ऐसा माहौल आ जाएगा, हमारे माँ बहन जो इख्तलाफ था वो इख्तलाफ चला जाएगा, तारीख का ऐसा बन जाएगा, लेकिन हमारे इस माहौल में फिर भी ऐसा कुछ तकरार नहीं हो जाए।
आखिरी आपका एनालिसिस लेना चाहूँगा, एक ख्याल ये किया जा रहा है कि तालिबान के अंदर वो धड़े जो मुजाकरात के हामी नहीं हैं, अगर मुजाकरात होते हैं तो वो अलग हो सकते हैं और वो दाएश या इस्लामिक स्टेट जैसी तंजीमों को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में अफगान माहरीन क्या कह रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या है?
हमने ये सुना है लेकिन मेरे ख्याल में जो तालिबान दाएश के साथ मिलने या वहाँ पे मर्जर करने या उनका हिस्सा बनने का जो उन्होंने तवक्कु किया था वो काम वो पहले हो गया, उससे कुछ नहीं हासिल होता। जो लीडरशिप क्वेटा में बैठा है अगर वो यहाँ पीस का मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ाएं तो वो लोग जो दाइश के साथ चला जाएगा तारीख के साथ चला जाएगा।
सही,
उनका कोई भी लोग यहाँ उनसे परेशान नहीं होंगे।
ठीक है, यानी वो खत्म हो जाएंगे, माजी का हिस्सा हो जाएंगे, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है।
जी
जी,
अब मिसल तो ये है कि हम लोग 40 साल यहाँ इस मुल्क में जिस हालत से दुचार हैं,
जी जी,
ये हालत इस हालत को दूर करने के लिए दुनिया यहाँ हाथ बिठाए हमारा और हमारे पीछे खड़ा हो जाए और ये इस खत्ते में वो सुलह और से बात यानी पीसफुल एनवायरनमेंट और यो जो स्टेबल एनवायरनमेंट है उसको मुस्तकम करने के लिए अपना रसूख अपना कोशिश इस्तेमाल करें, हमारा ये ख्वाहिश है।
बहुत शुक्रिया आपका रशीद वजीरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रशीद वजीरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात आपको सुनवाते हैं ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब की, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, इंटेलिजेंस ऑफिशियल रह चुके हैं पाकिस्तान के लिए, उनसे भी हमने इन्हीं दोनों मौजूदात पर बात की है, आइए सुनते हैं। ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकाला। अफगान तालिबान की क़यादत में ट्रांजिशन हुई है और वो भी ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात पाकिस्तान जिनको होस्ट कर रहा था, चाइना अमेरिका वो उसके ऑब्ज़र्वर हैं, आपके ख्याल में ये तब्दीली जो आई है उनकी सफ़ों में इसका क्या इम्पेक्ट होगा? और सेकेंडली ये कि अब क्या ये समझ लिया जाए कि जो मुल्ला उमर की मौत की खबरें हैं वो कमोबेश की तस्दीक हो चुकी है, क्योंकि वाइट हाउस भी कहता है कि वो क्रेडिबल या रिलायबल खबरें लग रही हैं।
बिल्कुल जी, वो तो कन्फर्म खबर है, अभी सिर्फ ये नहीं पता है, कुछ लोग कह रहे हैं 2013 में, मेरा अपना ख्याल है कि हो सकता है उससे पहले भी उनकी वफात हुई हो। इसका इम्पैक्ट एक तो ये होगा कि इसमें दड़े बनेंगे, ये तालिबान पहले भी यूनाइटेड इस तरह के नहीं थे, ये जो है ना इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स थे और वो ग्रुप जो होते थे वो हर वक्त इस कोशिश में लगे रहते थे कि उनको ज्यादा इख्तियार मिले, उनका असर वसूख पड़े। तो अभी जो ये मुल्ला मंसूर ने फैसला किया है इसको वो नहीं मान रहे और उसमें बड़े बड़े नाम है, जिसकी वजह से ये बात भी निकली है कि ये जो कमांडर ने उनको बोला है कि जी आप हमें बताएं मतलब उमर का पैगाम आरडीओ का दे, तंजीम नहीं थी कि एक तंजीम है, उसमें पहले भी ग्रुप्स थे लेकिन चूंकि उनका एक लीडर था तो वो हर एक ग्रुप अपने मुख्तलिफ औकात में चाहता था कि उसको ज्यादा अख्तियार मिले और उसको जो है ना असर रसूख बढ़े, लेकिन अभी देखते हैं कि जी ये किसी एक आदमी पर रजामंद होते हैं या नहीं है, जो मुझे नहीं लगता कि होंगे, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग वो होंगे जो चाहते हैं कि जी बातचीत से अब ये मसला हल करें, ये है तो वो हावी हो जाएंगे और अगर जो थोड़े रह गए अगर वो इंसर्जेंसी करेंगे भी तो वो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है।
ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि मुल्ला मंसूर उनके बारे में कहा जा रहा है, अभी अफगानिस्तान के अंदर काबुल के अंदर एक थिंक टैंक है रीजनल स्टडी सेंटर, उनके एक्सपर्ट से बात हो रही थी तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो प्रो डायलाग हैं और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप भी बेहतर हों अफगानिस्तान के और हेल्प कर सकते हैं ये सारा पीस प्रोसेस, और अमेरिका भी इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है उनके बकौल, क्योंकि उनके ख्याल में कुछ लिस्टें हैं उनके पास और शायद डायरेक्ट कांटेक्ट भी हों, तो इसके इम्कान नज़र आते हैं?
बिल्कुल जी, वो जो है ना एक वो मॉडरेट आदमी है, वो थ्रू आउट डायलॉग के फेवर में है, ये जितने मरी वाला जो हुआ है वो सारे आदमी उन्होंने नॉमिनेट किए थे, वो कतर वाले उसका उनके साथ जो है ना डिफरेंस आ गया था, लेकिन ये अगर प्रिवेल कर गए, अभी तो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं लेकिन चूंकि इसने हकानी को साथ में ला लिया जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है तो ये जो है ना इसकी ताकत फिलहाल ज्यादा होगी, लेकिन डायलॉग एकदम अभी नहीं शुरू कर सकेंगे जब तक इनका ये एक दफा सेटल नहीं होता कि कौन लीडर होगा।
सही, एक इसी से ज़िमनन एक जुड़ा हुआ हमारा मौजू भी है, ऑलरेडी ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वो हार्ड लाइनर्स जो मुज़ाकरात में नहीं जाना चाहेंगे तो वो अपने आप को रीग्रुप कर सकते हैं या दाइश जैसे जो फिनोमेना है जो एक इमर्जिंग थ्रेट भी है उसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है ना कि डिस्पाइट हैवी बॉम्बिंग इस्लामिक स्टेट पे वहाँ पे खासतौर पे सीरिया और इराक के अंदर उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है और वो वीक नहीं हुई बल्कि उसने अपने आप को फैलाया है दुनिया के दीगर रीजन्स तक भी,
लेकिन फिलहाल अभी तक उनका जो फोकस है ना वो मिडिल ईस्ट है
जी जी
और अरब ममालिक हैं, अभी तक जो है ना उसने चूंकि بغدادی نے ملا عمر کے خلاف بہت ڈیروگیٹری جیسے لفظ بھی استعمال کیے تھے کہ اس کو اسلام کا زیادہ علم نہیں ہے.
صحیح.
تو یہاں پر صرف وہ لوگ ان کے پاس جائیں گے جن کو طالبان ڈس آن کر دیتی ہے یا کمانڈ سے ہٹا دیتی ہے یا اپنی تنظیم سے نکال دیتی ہے, تو وہ اپنی سروائیول کے لیے
صحیح.
وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جائیں, لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ ابھی فوراً اس طرح کی کوئی چیز آئے گی سامنے کہ جی ہمارا جو امیر المومنین ہے وہ بغدادی ہے. ہو سکتا آ جائے لیکن وہ چھوٹے پیمانے پر ہو جائے.
اچھا آخری بات سر, ملا منصور کی قیادت اگر اس پہ زیادہ تر کا اتفاق ہو جاتا ہے, وہ ڈائیلاگ میں جاتے ہیں اور جو دھڑے الگ ہوتے ہیں, وہ کتنے آپ کے خیال میں کتنی دیر تک ریزسٹ کر سکیں گے, یا ان کے لیے مشکل ہوگا آپ نے آپ کو اس طریقے سے ایک ملیٹنٹ ونگز کے طور پہ یا جنگجوؤں کے طور پہ آپریٹ کرنا اس ریجن کے اندر؟ جی سامعین, برگیڈیر اسد منیر صاحب کا انٹرویو ہم آپ کو سنوا رہے تھے, ریکارڈڈ تھا, لیکن اس کا آخری جواب ہم آپ کو نہیں سنوا پائے. ان کا خیال تھا کہ یہ کافی مشکل ہوگا. ایک سوال ہم نے اور بھی ان سے کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ حقانی نیٹ ورک, تو ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی بڑا فینومینا نہیں ہے اور وہ آلریڈی ملا منصور کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آج کا یہ پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.